ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਸਰਵ ਸੰਤੋ ਕੀ ਜੈ, ਸਰਵ ਭਗਤੋ ਕੀ ਜੈ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਸੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਾਣੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਰੋਥਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਵਾਲਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨੋਲੀ ਨਾਦ ਸੁਭਾਨ ਗਤੀ, ਲੜੈ ਬੁਦੰਗ ਹਮੇਸ਼, ਜੜੀ ਜਾਨੋ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਵਿਸ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੈ ਸੇਸ਼। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੇ ਸਾਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਯੇ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਪਨਪਤਿ ਮੰਤਰ ਸੁਨ ਰੱਖ ਪੁਨ ਸੁਕੋੜੇ, ਐਸੇ ਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਗਲ ਚਲੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਤਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਫਨਪਤੀ ਸਰਪ ਔਰ ਗਾਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕੋ ਸੁਣਕਰ ਉਸਸੇ ਇਤਨਾ ਡਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਨ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗਨੇ ਕੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਸੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮੰਤਰ ਸੇ ਯੂ ਕਾਲ ਚਲੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ, ਐਸੇ ਕਾਲ ਦੂਰ ਭਾਗ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯਮ ਕਿੰਕਰ ਕਰ ਜੋੜ ਚਲੇ ਤਿਸ ਦੇਖਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਯ ਕੇ ਅੰਕ ਮਿਟਾਵੇ ਲੇਖਰੇ, ਜੀਵ ਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬਾਠਾ ਡੈ ਗਈ, ਦੁਰਗ ਮੰਜ ਹਜ਼ੂਰ ਪਕੜ ਛੇ ਕੀ ਬਹੀ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਆਖੋ ਦੇਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਵਰਣਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ, ਕਿ ਉਨਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਯਮ ਕੇ ਦੂਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੀ ਨਿਕਾਲੀ। ਬਹੀ ਵੋ ਬੁੱਕ ਵੋ ਪੈਡ ਜਿਸ ਪੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੇ ਮੁਝੇ ਦੋ, ਯੇ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਪੈਡ ਪੜਦੀ ਦਾ ਤਨ ਵਹੀ ਕਰ ਪਰ ਪੈਗ ਦੀ ਕੂੜੇ ਮੈਂ ਦਰਗ ਮੰਜ ਹਜ਼ੂਰ ਪਕੜ ਛੇ ਕੀ ਬਹੀ, ਜੀਵ ਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬਾਠਾ ਡੈ ਗਈ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਕੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਜਿਸਕਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿਸਕੋ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਲਖ 84 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਯੋਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਂਹ ਠਾਡੈ ਗਈ, ਠੱਡ ਠਾਡਾ ਮੀਨ ਤਗੜੇ ਸਮਰਥ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਹਮੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦੀ। ਠਾਡੇ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਕਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਨਥਾ ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਏਕ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਮੇਂ ਥਾ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਥੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਰਸਾ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਨਾ ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਥਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਤੀ ਥੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਸ਼ੇਤਰ ਮੇਂ, ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਸਕੋ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਥੀ ਉਸਮੇਂ। ਉਸ ਭਗਤ ਕੇ ਬਹਿਨ ਕੇ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਵਰਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭੀ ਖੇਤ ਏਕਦਮ ਬਹਾਨੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਹਾਉਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਲਪ ਕੇ ਲਈ ਆਓ। वो अपने बैल अपना हल लेकर चला गया, उसको दूसरे खेत में भेज दिया। स्वयं उसका दुदीजा था, बहन का बटेऊ पति, वो अपने बैल लेकर दूसरे खेत में चला गया। जिस खेत में वो भक्त गया, दिन में हल चलाया, दोपहर के समय उस समय रेस्ट देते हैं बैलों को, पेड़ के नीचे चला गया। फिर वहां देखा आसपास एक तालाब थी, छोटी सी तलैया जोड़ी, उसमें कुछ पेड़ प्याड़ थे, पानी था, बैलों को पानी पिलाने चला गया। तो वहां एक मंडी बनी हुई थी, यादगार सी छोटी सी, चबूतरा सा बनाकर उस पर एक बेली गुड़की रखी थी। बेली पहले 5 किलो का कट्ठा ही बना करते, वो विशेषकर चढ़ाने के लिए होता था, भेंट अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहली फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाओ, वो पीर की मंडी थी। तो वो जो एक का डड़ा सा था मोटा 5 किलो का, 5 शेर का, उसको उठा लाया वो भक्त, कुछ आप खाया कुछ बैलों को खिला दिया, अपना काम करके शाम में घर पर आ गया, सो गया। रात्रि के 12 बजे के आसपास एक 4.5 फुट का टोपी सिर पे सफेद कपड़े दाढ़ी जैसे मुसलमान वेशभूषा हो आके उससे 10 फुट दूर खड़ा होके और कहने लगा, तेरा तेरा गुड़ कैसे खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो ठाडे की शरण में है इसलिए बच गया, न तुझे मारता और तेरे दोनों बैलों को मारूंगा, मेरी पार नहीं बसाई, और कती लाल आख कर रखी और बहुत गुस्से में था। यूं कह के चला गया। भगत को भी फिर थोड़ा सा एहसास हुआ, यू के बला थी, बाकी इतना तो विश्वास था कि समर्थ की शरण में हो, इस तरह के कुतरुओं का कोई बहुत नहीं। फिर भी मन में था भी कदे ये बात हुई तो हुई, क्यों ऐसा के कारण हो गया। उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन ऐसे ऐसे उस मंडी पर गुड़ चढ़ा रखा था आपके खेत में, किसकी मां रखी है वो आपके खेत के बराबर में जोड़ी पे तालाब पे। तो उसकी बहन बोली के बात हुई भाई, क्योंकि एक बेली चढ़ा रखी थी, किसी ने गुड़की ऊपर रखी थी, मैं ठा लिया उड़े कुत्ते खाओ, उसने मन बहन आती खिला दी, कुछ आप खा ली। उसकी बहन बोली रे क्यों जुलम कर दिया तेने, क्यों उठा लिया तू वहां से, रोड़ लागी न सुनते ही। भाई बोला मेरी तो सुन ले सारी, वो एक इतने 4.5 फुट का आदमी होगा और सफेद कपड़े पहन रखा, ऊपर टोपी मुसलमान टाइप सा था, और मेरे से 10 फुट दूर खड़ा होगा, रात को आया और बोला तेरी हिम्मत कैसे पट गई, मेरा गुड़ उठा लिया, तेने खा कैसे लिया। मैं बोला नहीं वो आपे बोलेगा, ने बोला तू ठाट देगी शरण में है, ना तुझे मारू और तेरे दोनों का लाल मारू, लाल ला के रखी थी और नो कहकर चला गया वापस। वह बहन और फूट फूट कर रोने लगी, बोला रे तू मेरा काला मुंह कराओ के जवाब दो, मां ने न्यू सहर से तने के वो एक गुड़ पाया खाने को, हमारे आप तरह गुड़ की कमी है यहाँ पर, बहुत बुरी तरह लगी रो भाई, बचा कुकर मेरा भाई, अपने पति ने भी लड़न लाएगी, तने क्यों भेजा ही उस साइड में, तो इन्होंने क्यों ना भेजा, तने बताना चाहिए था इसको पहले। वो भाई बोला है तेरी अब भी अकल पर पड़दा पड़ रहा, उतरा शेर हाथ जोड़ के गया, अरे नो कह तू ठेगी सर में हजार तो बच गया, न मारे नहीं दो मैंने तो रोए जाओ पाचे थे, अरे मैं जिंदा जी रोन लाग रही तो पागल कहेंगी, कितनी भी अकल पर पड़दा पड़ गया तुम्हारे, मैं किसकी सुन हूं पता है, मैं ये रिक्वेस्ट करूं तारे ते तुम भी आ जाओ, नैन भूतड़ा दिन डर डर मर जाओगे। तो बच्चो यम किं कर कर जोड़ चले तिस देख रे, बच्चो आत्मा फूट फूट गाती है, चारों युग में संत पुकारे को क्या हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग टूटा ढेर रे, ये डड़े चुगड़ की आदत पड़ गई है, यम किं कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय की बंद मिटावे लेखरे, जीव जूनी नहीं जावा ठाडे गई ठाडे में, दर्द मंद हजूर पकड़ छे की वही, सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों, इस परम पिता के प्रेम में ऐसे गजब के ज्ञान, ऐसे समर्थ की शर्म आत्मा बाहों को देती है, रोका नहीं जा सकता। सो सो शुक्र मनाते अपने गुरुदेव का, हे निचोड़, हे परम पिता, कैसे शरण दिया, कैसा सुंदर राह बता दिया। नहीं या नए बिरान माटी राखो या भूतड़े, अरे न पूजे भी जाओ और दुर्गति भी जो कि न रहनी थी। पर गीता कहती है भूत पूजोगे भूत पढ़ोगे, परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी कहती है भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, तुम सकल सुरदेव। अब प्रश्न चल रहा है, कबीर जैसे फन पति मंत्र सुन रख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल चले मो मोड़े। पारक के अंकी अमर ग्रंथ की प्रथम वाणी है, गरीब नौल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है विस्नेह कैसे। जैसे एक नेवला होता है सारा 9 इंच का प्राणी, और वो 10 फुट के सांप को सर्प को भुजंग को मार देता है। कैसे मार देता, उसके पास एक ट्रिक है, उसके पास एक जड़ी होती है, एक नागदमन जड़ी होती है जंगल में, उसको सूंघता है, उसमें स्मेल आती है, वो सर्प को उस समय छेड़ता है जो वो जड़ी के आसपास होता है, वो झाड़ बोझड़ों के अंदर होती है, वो सर्प को छेड़ता है, सर्प ऐसे फन उठा लेता है, और वो जाके एकदम वहां जड़ी श्वास में भर लेता स्मेल, और आके उस सर्प के सामने सोके थोड़ी सी दूरी से छोड़ देता है, जिधर से हवा चल रही हो सर्प की तरफ जा रही हो उस साइड में हो जाता हो, सर्प को उससे चक्कर आने शुरू हो जाते उस स्मेल से, उसका जी घबराता है और वो भागने की चेष्टा करता है। नेवला फिर उसके गर्दन पर बैठ जाता है, मुंडी पर पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो समय छोड़ता ही रहता है, उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम सतनाम और सार नाम, सार नाम है ये है मेन चीज, सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है मेडिसिन, और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सार नाम है वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा, ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सार नाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, समैल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है, ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सेवन श्वास के द्वारा करने से। तो ये बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है, जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है वो जड़ी है, वो नागदमन जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है, जैसे प्रथम मंत्र सतनाम ये साधना है, सार नाम हमारी पूजा है। पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं, हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बार डालते रहते हैं, सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मारकर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है, और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है। वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है, जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख परमपिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है, वो जड़ी जानो नाम जगदीश है, परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम, वो नाग दमन जड़ी बूटी है, वो काल दमन और विष्णी व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 पुन का पंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चो किस्मत सराहा करो अपनी, सो सो गुण गाया करो। गरीबदास जी कहते हैं गरीब साधों से ते मस्करी ये चोरों नाल खुसाद, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल रेसलर पहलवान ये नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार, साधों से ती मस्करी इन चोरा नाल खुशाल, हाय हाय इन चोरों से झूठे गुरुओं से खुश और साधु संतों के मजाक करते हैं, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो वो युगन युगन के माल। बच्चों आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है, टीचर सारा साल सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुलटा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा योगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए हैं और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब धन दान करते थे, लागड़ गऊ बांटा करते थे, हजार हजार लागड़ गऊ बांट देते, लागड़ माने बच्चे वाली प्याई दूध वाली, भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की, कोई ऋषि रूप बनाकर अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया, लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक, आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छोड़ दी और ऋषियों वाली वो शुरुआत कर दी। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे, बच्चों अब हंसी भी आती है, दुख भी होता है, गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वच पुराने ठारा और पत्थर की पूजा करे बोलिए सृजनहारा। वेद पढ़ा करते ऋषि उसमें, केवल वेद पुराण तीन की अपनी रचना है, फिर गोसा सा लिखते चले गए और सारा वेद के विरुद्ध साधना करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करे और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सार अंश है। विष्णु तीन गुणों में से एक सतगुण है, इन तीनों गुणों की भक्ति तक त्रिगुण में माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी दसी भी चल रहा भक्ति युग। बच्चों आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएंगे या कहानी सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो, इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भक्त बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चल लेगा जो भी लाखों वर्ष और भी चलेगा, लेकिन वो साधना करते रहेंगे लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में, उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा, उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा, ऊपर के लोकों में स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे, यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, चैन है, चैन, उस चैन पर जैसे डाल देते हैं ब्रह्म लोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक शिव लोक सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके फिर भी उनके पुण्य इतने बस जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको, और सतयुग में भी अच्छे पुण्य कर्म फिर राजा बनते हैं, और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है, और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं तू संत, भक्तों के पीछे फिर भक्त वसल भगवंत। कबीर, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करूं जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अम्बरीश से मिले, ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है, ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता, उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहाँ सी बातें करते हैं, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्य भोगे, फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म दिया, वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी, वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था, परमात्मा फिर भी मिले उनको, लेकिन राजा और सिद्धियां इतने ठाठ बाठ और मकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिसकाट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं, लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्ति मालिक की वो भक्ति की सही थी, एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वा कर, अम्बरीश ने आत भर ली पर छोड़ी नहीं, अगली बार गया उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा था, सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया, सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छूके और दुर्वासा मारण खातिर वापस चल पड़ा, दुर्वासा भागता फिरा तीन लोक में, कितने उसने गुफा नहीं मिली जरा बच जा, कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सवाल आ दी, एक मिनट में के कर नहीं कर दिया, फल में दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे वहीं पहुंच गया, और कंप डांक ठोके रखी, मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को, फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता, ये मार्ग अपना ज्ञान दो, कोई मानने ठीक है ना मानो ना मानो, मुझे बचाओ भगवान मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्कर रुक गया, खड़ा हो गया दूर भगवान की शक्ति से डर के देख के, तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहां बचाओ हो सकता है, माफ करो मुझे माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तुम्हें, इससे मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़ा है भगवान आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा, कहां भेजो हो दाता मन तो रास्ते में मारेगा, मिला जा वही जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो जिसने 56 करोड़ या दो मार दिए थे एक वचन था। तो कहते हैं अपने देशी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सोवा शेर जरूर टकरा कर गणी बकवाद करनी है। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने, मेरी जान बख्शो महाराज, जान बख्शो बख्श। अम्बरीश राजा बोले महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा कर्म तुझे मिला। और वो सुदर्शन चक्कर हाथ से पकड़ लिया राजा अम्बरीश ने और ऑफ कर दिया, शांत हो गया। बोला ले ले जा तेरी तोब। और भक्ति के भाव रहना चाहिए इंसान। बच्चों अम्बरीश राजा की इतनी महिमा होगी, ऋषि भी हैरान थे जो उनके गुरु लोग थे। बंदी छोड़ कहते मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे। तू सुख के सागर बसरे या झूठे यशों में कुछ नहीं धरिया, वह सतयुग में महिमा होगी फिर राजा जनक बन गए। राजा जनक वही भाग्य बाबा नानक बने जब एक सुखदेव नाम के बाल ब्रह्मचारी माँ के गर्भ से भक्ति ले रहे थे और आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, उस अर्धी की गांठ से पंसारी बन जाते ये अपने बराबर किसी ने नहीं समझा था। राजा जनक के पैरों में पड़कर स्वर्ग तक जाने का विरोध करवाया, वो मोक्ष तक वो दूर की बात है, वो तो मार्ग ही नारा है। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी तुट्टी बोला करती है, सारे देवता उसका सम्मान करते थे, बड़ा पहुंचा हुआ है, वो भी फिर 84 लाख जन्मियों में गया। राजा जनक से दीक्षा ली, पहले तो यूं कह था मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषि जनक विदेही राजा भाई कैसे शीश निभाऊ जाए। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा, राजा के 10,000 रानियां। तो गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जी हान, वो अपने आप को जति मान रहा था और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है, इन बात का तो नहीं भाई, इसने ब्याह करवा रखे इसका यूं हो रहा था, भाई संत कैसे हो सकता है। 10,000 रानी थी फिर भी उस नकली थे दो भी अच्छा था राजा जनक। बच्चों ये मूल ज्ञान है, ये निचोड़ है, निष्कर्ष है, ये तत्व ज्ञान है। और राजा जनक रूप में बहुत गणे यज्ञ किए, बहुत प्रमाण है पुराणों में, बहुत धर्म भंडारे लाए, यानी दूध वाली गायें वाटी साधु संत, तो धर्म पुन बन गए। अब देख काल कैसे ठगी करता, बच्चों सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, बेमतलब अपने धन ने खोया नहीं करते। राजा जनक और सुखदेव विमानों बैठकर स्वर्ग जान लग रहे, रास्ते में 12 करोड़ आत्माएं मर्क में तंग पा रही थी, हाहाकार मचा रो में। राजा जनक ने कहा ये आवाज कहां से आ रही है चिल्लाने की, रोको मेरा विमान रोको, रोक दिया। उनको बताया गया कि यहां एक नरक है, उसमें 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने कर्म दंड भोग रहे पाप। राजा ने कहा इनको छोड़ दो, इनको कष्ट ना दो। तो वहां जो उनके साथ गए थे देवदूत यमदूत, वो कहने लगे जी यहां आपका हुक्म नहीं चलता, यहां का राजा धर्मराज है, उसके आदेश से सब कुछ होता है। बोला या तो मुझे इस नरक में डाल दो, मुझे भी यहीं छोड़ दो, ना इनको निकाल। धर्मराज तक बात गई, धर्मराज जी वहां आए, बात सुनी। धर्मराज बोले राजन अपने अपने कर्मा का फल सब भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तो राजा आकड़ गया, भाव यानी एक परमार्थी भाव, परमार्थ भी हिसाब का होना चाहिए, उपवाद में कोई परमार्थ नहीं चला गया। कि या तो मुझे यहाँ छोड़ दो या इनको साथ लो मेरे। तर धर्मराय ने एक विकल्प निकाला कि आप अपने पुण्य दे दो इनको, आप दे या जितने चाहते हो उतने समय तक इनको आपके साथ वहां स्वर्ग में भेज देंगे। राजा ने 50% पुण्य दान कर दिए, सबको बिठा के 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बिठा के और स्वर्ग ले गए। बच्चों, सुखदेव ने आकृति करी नहीं, वो तो आज तक स्वर्ग में है, और वो राजा जनक ने आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के पुण्य में तिल्ला झाड़ के खा के खर्च के खो खंडा के बाबा नानक रूप में जन्मे। पहले राजा थे 2 जन्मों में, दुनिया भर के नौकर होते थे, और फिर हैंड टू माउथ हो गए, खुद नौकर लगे नवाब के मोदी खाने में गोदाम में। अब बच्चों, अब हमने सावधानी न्यो भी बरतनी है, अपने नाम ने अपने भक्ति ने नष्ट नहीं करा, किसी के ऊपर भावुक हो गया। एक बताओ था कि मैंने अपने भाई दुखी हो रहा था, उसको अपने पुण्य दे दिए, भक्ति दे दी, वो तो ठीक हो गया, मेरी ड्यूटी हो रही है, बुरा हाल हो रहा ना, वो दिक्कत होगी, बीमारी होगी, आगे तागे दुख होने लग गए, तो ये बकवाद नहीं चले, मर्यादा जो बनाई है उसको संभालो। तो कहने का भाव ये है कि आपको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं। अब राजा जनक राजा थे, राजा अम्बरीश राजा थे, वो बाबा नानक बने, खुद नौकर लगे के राजा के। अब यहां आकर हमारी बात टिकती है कि साधों से तीमस करिए चोरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युग निगुद के बाद। यानी भक्ति की चाह, भगवान की चाह उनके मन तब भी थी, पर एक्सरसाइज गलत थी। अब परमात्मा फिर मिले उनको आकर के, अब वो भौतिक धन में निर्धन थे, पर अध्यात्म धन के भरे पड़े थे। पिछले पुण्य गजब के थे भक्ति वाले, एक तो धर्म कर्म किए होते वो, और एक होते भक्ति की शक्ति, वह न्यो की नोडिटरी थी उसकी, वो पुण्य खत्म कर दिए थे। तो वो भक्ति उस कारण से परमात्मा फिर आकर मिले। अब वो हैंड टू माउथ था, सुन ली, राजा होता तो तब भी ना सुनता। तो बच्चों, आज आप से कितने निर्धन हो और कितने धनवान हो, आप उस मालिक के सच्चे बच्चे हो, पिछले जन्म जन्मांतर से आप भक्ति करते हुआ रहे हो। अब परमात्मा ने अपना वो धन देखना है, कबीर शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान वा को जानियो जहा पर राम नाम धन वही है। आपके पास वो राम नाम का धन भरा पड़ा है, और जैसे सुकुच मेन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐड ही जाएगी, सुकुच मेन सदगुरु हो आया जिन परमात्मा का भेद बता। जैसे सीप और मोती का उदाहरण दिया जाता है कि स्वाति भी मिल गई सीप को, ऊपर की बूंद, मोती भी बन गया, लेकिन एक सुकच मीन जब उसमें टक्कर ना मारा, उसने खुला नहीं, तो मोती माए गड़ गया और वह सीप भी मर गया। तो बच्चों, यो भक्ति धन थारा इब कभी नहीं गड़ मर जाता, सतगुरु ना मिलता था। तो अब आपका वो मोती सुरक्षित है। अब कहते सुकच मीन सतगुरु हो आया जिन परमात्मा का भेद बता। तो बच्चों, फिर बाबा नानक को मालिक ऊपर लेकर गए और उनको वो सच्चा राह बताया। उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यानी पहले वकील हो रहे थे काल के, सुने नहीं थे। अब जो बाबा नानक जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, खत्री गोत्र था, और भगवान विष्णु कृष्ण राम कुर्बान थे इनके ऊपर, गीता का पाठ ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे और गीता पढ़ते थे। दाता मिले तो खूब तर्क वितर्क किए, आखिर में बोले अखा वेखो तो मानो। तो परमात्मा ने आई विटनेस भी बनाने थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से बह रही है, सुल्तानपुर में बाबा नानक की बड़ी बहन ब्याह रखी थी, वह अपनी बहन के वहां रहते थे, नौकरी करते थे नवाब के। सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे उस नदी पे, वहां परमात्मा ने दो तीन मीटिंग करी। तीसरी बार जब आए ने बोले आख्यां देखो जो मानो बात सारी समझ में आ गई, गीता बार बार देख ली पढ़ ली, सच्चाई भगवान कोई और है। और चाहो भी थे पर पुराना ज्ञान और कोई नो समर्थक नहीं गया बात सच्ची है। तो वो कहने लगे आखा देखो तो मानो, कबीर साहब और बाबा नानक जी परमात्मा समकालीन थे। बाबा नानक जी का जन्म 1469 में हुआ और 1539 में वो शरीर छोड़ के गए, और परमात्मा जी 1518 में गए। तो 1469 से 1518 तक समकालीन थे। तब आंखों देखा सतलोक 3 दिन तक नानक साहब जी का शरीर कहीं और छुपा के उनकी आत्मा को लेके गए, फिर छोड़ा तीसरे दिन। उसके बाद तो दुनिया बदल गई उनकी, वो सब पूजाएं त्याग बल किसण में आगे, घर में विरोध सारे समाज में विरोध। उसके पिता भी बहुत दुखी हो गए, तो के पैदा हो गया हमारे देवी देवताओं को ऐसा गलत बोलता है, तो बहुत परेशान हुए। लेकिन जब आंखों देख ली कौन सुने किसकी, सूरवीर होते संत, संत सिपाही और शेर पीछे नहीं हटते। तो बच्चों सारा ज्ञान सत्संग से होता है, परमात्मा का और उस प्यारी आत्मा का, आत्मा और परमात्मा नानक साहब का सत्संग हुआ, सत्संग से बात स्पष्ट हुई। अब पारक के अंक की वाणी सुनाता हूं कुछ। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब वो बाबा नानक युगन युगन के माल थे पर वे जीते, डट के खड़े हो गए। फिर जब ज्ञान समझ में आ गया सारा संसार मीराबाई थी युगन युगन की माल, सत्संग में जाना ना छुटे माँ तो जल के मरो संसार। तो बच्चो इस स्थिति में तो बनाना पड़ेगा एक दिन जब जाता राजी होगा, और ये ज्ञान खुद देता है भगवान, और वो आत्मा जो इसको सुनकर कुर्बान हो जाती है वो महान आत्मा होती है। गरीब अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, कव्वे उड़ उड़ जाते हैं खाते मसाड़। हंस और कौवे और बुगले सब पक्षी कहलाते हैं। हंस उस मानसरोवर को नहीं छोड़ता जहां उसका आहार मोती होते हैं, और कौवे वहां टिके नहीं क्योंकि उन्हें तो जगह जगह जाकर मांस खाना, हाड़ खाड़े हाड़ों का मांस चाटना, किसी पशु के जख्म में चोंच मारना, ये कौवे जैसी व्यक्ति के लोगों का स्वभाव होता है कि उनका अपना उल्लू सीधा हो, स्वार्थ सिद्ध हो, बाकी अगला कितना दुखी हो, ये कौवे जैसे जीव होते। अब यहां बताते हैं कबीर साहब कहते हैं, गरीब अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मसाड़। गरीब मान सरोवर मुक्ति फल मुक्ता हल्के ढेरे, कौवा आसन न बंद जब भूमि दिन सुमेरे। गरीब कौवा रूपी भेक है ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेट करे भये दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंग। अब स्पष्ट कर दिया कि ये सत्संग जो है ये मान सरोवर है, और भगत साध ये हमारे हंस हैं। अब कौवे बुगले तो मेंढक मछली अड़ंगा कुवाड़ बकवाद करते हैं, और हंस केवल मोती खाता है। इसी प्रकार निर्विकार जो भगत आत्मा बन गए, बेटा या बेटी, वो हंस जैसे हैं, वो केवल मालक की वाणी परमात्मा की भक्ति और धर्म कर्म रूपी मोती खाते हैं। और फिर ये मोती खा के यानी सत्संग वचन सुन के फिर चढ़त नवेला रंग, एक अजब गजब रंग रंग जाता है उसकी आत्मा में। आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है जैसे बाबा नानक की होगी, जैसे मीरा बाई की होगी, ऐसी आपकी भी होगी इस सत्संग से होगी। बच्चों ये सत्संग मिला ही नहीं था अपने को आज तक, या परमात्मा की कलम तोड़ कृपा आप पर देखो ना कितना लाग रही रहे उस बालक ने, उस परमात्मा के ये वचन याद कर लो, सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जब डाली, जो जो चावे सो कर लो ये प्रमाण देख यू कर दिया। ओत भूत चमत्रास निवार पर चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं धन आपके मात पिता जिनसे जन्म, अब धन आपकी किस्मत, धन आपकी पिछली करनी और धन आपके इस समय को कि आपका जन्म किस समय हुआ है। इस मालिक के प्रयत्न को, दास के इस प्रयत्न को हल्के बना लेना। पुण्यात्माओं उस दाता की अमर कथा आपके हृदय में भर रहा हूं, ये अमृत हार आपको करा रहा हूं। बच्चों कुर्बान हो जाओ, समय पहचान दो, टाइम बार बार नहीं आता होगा आपके। ये संसारिक धंधे थे कर कर मर लिए, इनमें फिर भी पूरा ना पटता। इस मालिक की तरफ ध्यान ज्यादा दो, हर चीज में बरकत दिखा दूंगा नारी नारी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको समय देश अनुभव रतन इस मान सरोवर बनाने का, आत्मा के मैल कटाने का सत्साहित।